हज और उम्रे में खवातीन के लिए आसानियाँ, खवातीन के मुतल्लिका मसाइल सारे अमूमन इसमें आ जाते हैं। तो आइए देखिएगा, साबका सफहात में हज और उम्रे की बयान करदा आसानियाँ मर्दों और खवातीन सब के लिए हैं, लेकिन कुछ आसानियाँ सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस हैं। ऐसी ही नौ आसानियाँ तौफीक इलाही से ज़ेल में जिक्र की जा रही हैं, यानी नौ मुख्तलिफ आसानियाँ जो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर खवातीन के लिए रखी हैं। नंबर एक, महरम या शौहर के बगैर खातून पर हज का फ़र्ज़ ना होना। कई औरतें वो कहती हैं हमारा तो कोई है ही नहीं, बाप नहीं है, शौहर नहीं है, बच्चा है कोई नहीं, क्या करें, ना करें हज। अल्लाह ने आपके लिए सहूलत रखी हुई है, तो मुश्किल क्या होती है, कोई नहीं साथ जाने वाला, लेकिन फ़र्ज़ है, ठीक है। तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ नहीं है। खातून पर हज की फर्जियत की शरायत में से एक यह है कि सफ़र में हमराह जाने के लिए महरम या शौहर हो, इनकी अदम मौजूदगी में इस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं होगा और हज ना करने के बिना पर इस पर कोई गुनाह नहीं। अलावा जी, हमराह जाने वाले महरम के लिए ज़रूरी है कि वो अकिल बालिग हो, नाबालिग बच्चे महरम के वजूद की शर्त को पूरा नहीं करते। तो कल भी यहाँ सवाल हो रहा था ना कि फलां कहते हैं जी मैं इसका नाना बन के जा रहा हूँ, या कोई ख़ुद से मस्जिद के इमाम है और वो कहते हैं कि मैं इसका महरम बन जाता हूँ, इसकी इजाज़त नहीं है। देखिए, ये तो रिश्तों को बदलने वाली बात है, और आपने देखा होगा इस्लाम का मिजाज, रिश्तों नातों के मामले में इस्लाम बहुत संजीदा है। जिना क्यों हराम है? क्योंकि बच्चे का नस्ब महफूज रहे। इसी तरह किसी का बच्चा अडॉप्ट करना और उसको अपना नाम देना इजाज़त नहीं है। क्यों? बच्चे को उसके बाप के नाम के साथ रखना है। मुंह बोला बेटा, मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन, इस्लाम इन रिश्तों को नहीं मानता। फिर इसी तरह से देखिए, हालत हैज़ और निफास में अहराम बांधना। अब ये क्वेश्चन किस औरत का हो सकता है जो अपने मुल्क या अपने शहर से जब निकली तो उस वक़्त वो बीमारी की कैफियत में थी, अब क्या करें? ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग करते हैं, और अक्सर इससे बचने के लिए कई किस्म की मेडिसन्स भी ली दी जाती है, तो इसको समझ लीजिएगा। हैज़ और जच्चगी, जच्चगी क्या है? नफास, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद के जो 40 डेज थे। हैज़ और जच्चगी अहराम बांधने की राह में रुकावट नहीं, मतलब ऐसी औरत जा सकती है हज या उम्रे पे। ऐसी खवातीन गुसल करके लंगोट कस लें और अहराम में दाखिल हो जाएं। बैतुल्ला के तवाफ़ के सिवा दीगर तमाम मनासी के हज आम लोगों की तरह अंजाम दें, ठीक है। मतलब हज के लिए आप देखिए कि मीना जाना है, मुजदलिफा जाना है, अरफात में जाना है, सब कुछ करेंगी, वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगी जैसे आमतौर पर नहीं पढ़ती। बाकी रहेगी जब वहाँ से वापस आना है 10 ज़िलहज को, तो उसमें तवाफ़ है, उसके लिए इंतज़ार किया जाएगा, बाकी जो काम है वो उसी से रेलिवेंट है। तो एक औरत इन दिनों में हज या उम्रे का अहराम बांध सकती है। खातून के अहराम का मखसूस लिबास ना होना। खवातीन अहराम की गरज से कोई मखसूस लिबास पहनने की पाबंद नहीं, वो शलवार कमीज़ और दीगर हर किस्म के खवातीन वाले कपड़े जेब व जीनत का इजहार किए बगैर पहन सकती हैं। मर्दों से मुशाबहत वाला लिबास हर हालत में इनके लिए पहनना नाजायज़ है। इसके अलावा इनके अहराम के लिबास में किसी रंग की कोई पाबंदी नहीं, बात वाज़ेह, कपड़े कोई भी पहने जा सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई बहुत भड़कीले या सिल में सितारे वाले तो वो पहनेगी भी नहीं, क्योंकि उसमें एक तो आराइश है, ज़िबाइश है, और दूसरी ये बात है कि उसमें तंगी होगी, उसको मुश्किल होगी, और फिर रंग भी कोई नहीं ज़रूरी वाइट है या ब्लैक है या ग्रीन है। बाजमात फ़र्ज़ नमाज के वक्त खवातीन का तवाफ़ करना। खवातीन बाजमात फ़र्ज़ नमाज में शरीक होने की पाबंद नहीं, इसलिए वो फ़र्ज़ नमाज अदा करने वाले मर्द हजरात के पीछे से तवाफ़ कर सकती हैं। उस वक़्त ज़रा खाली जगह होती है, कोई नमाज छोड़ के तवाफ़ करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जमात के साथ नमाज छोड़ने को दिल नहीं चाहेगा। तवाफ़ तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन बाहर वाली इजाज़त है। बवजह हैज़ उम्रा न कर सकने वाली खातून के हज ही से हज और उम्रा अदा होना। कोई औरत यहाँ से जब गई तो पीरियड्स में थी, अब उम्रा नहीं कर सकी, इतने में 8 ज़िलहज आ गया, तब वो 8 ज़िलहज ही से जो काम करेगी वही इंशाल्लाह उसका वो उसका एक किस्म का हज अफराद में बदल जाएगा, लेकिन उसका हज हो जाएगा। ऐसी खातून को बाद अज हज हदूद हरम से निकल कर उम्रे की इजाज़त। हज से पहले हैज़ के सबब अहराम के बावजूद उम्रा ना कर पाने वाली खातून सिर्फ मनासिक हज अदा करके हज और उम्रा करने वाली करार पाती है। इसके अलावा इसे हज के बाद हदूद हरम से निकल कर अहराम बांध कर एक मज़ीद उम्रा करने की इजाज़त है। आम लोगों के लिए हज के बाद हदूद हरम से निकल कर अहराम बांध कर उम्रा करना साबित नहीं है, इसको समझिएगा। ये वो इशू है जो उम्रे पे भी जाने वाले लोग और हज पे जाने वाले तो ख़ास तौर पे ही आप देख लीजिए कि इसका एहतमाम करते होंगे, जिसको मस्जिद आयशा कहते हैं आज के दौर में। तनीम है ये जगह बेसिकली जहाँ से हज का अहराम बांधे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ही हज किया उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ थी, जौजा थी। अल्लाह के नबी जब उनके पास आए हुजरे में तो वो रो रही थी। आपने पूछा क्या हुआ, आप खामोश रहीं। आपने कहा क्या तुझे वो हुआ जो कि ख़वातीन की बात है, यानी आप समझ गए उनका इशारा, और आपने उस वक़्त इशारतन इस बात को कह दिया कि क्या तुम्हें हैज़ आ गए हैं। तो हज़रत आयशा ने जब इस बात में सर हिलाया कि हाँ ऐसे ही हुआ है, तो आपने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, ये चीज़ तो अल्लाह ने हव्वा की बेटियों पे रख दी है। क्या करो, जो सब करते हैं वो करो सिवाय बैतुल्ला के तवाफ के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आयशा सिद्दीका सब सफ़र में साथ रहीं, सब जो काम हुए सब हो गए, वापस मक्का में आ गए। जब आप पाक हुई तो आपने उन्हीं के भाई हज़रत अब्दुलरहमान जो अबू बकर के बेटे थे उनको कहा जाओ इनके साथ और इनको तनीम से अहराम बंधवा के लाओ, यानी नियति करनी थी ना औरतों ने। अब यहाँ समझिएगा, भाई साथ गए हैं वही जगह जिधर आज मस्जिद आयशा है, वहाँ से आयशा को एहराम की नियत करवा के साथ लाए और उम्रा करवाया, भाई ने खुद नहीं किया। सवाल समझिए, अगर वहाँ जाकर बार बार एहराम बांध कर आकर उम्रा करना मशरू होता तो अब्दुलरहमान खुद क्यों ना करते। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र में एक ही उम्रा किया। एक सफ़र मुराद यहाँ से जद्दा के थ्रू आप मक्का में गए तो एक सफ़र हो गया, एक ही उम्रा है। एक दफ़ा जब आप मक्का में किसी भी तनीम से या किसी भी मीकात के थ्रू चले गए ना, उस सफ़र में एक ही उम्रा है। दूसरे उम्रे के लिए शर्त है कि आप मक्का से बाहर दूसरे शहर गए हों और वो आप मीकात की हद से बाहर थे, फिर दोबारा कर सकते हैं, मदीना से वापस आए फिर कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ आज आप देखिए, छोटा उम्रा बड़ा उम्रा दो दो रियाल लेते हैं लोग, लाइनों की लाइनें लगी हैं। अक्सर लोग, मैं ये जब हम गए थे तो क्लासेस भी ले रहे थे, वहाँ दर्स भी होते थे, तो अक्सर लोगों ने कहा नहीं कल हम उम्रा करने जा रहे हैं, छोटा उम्रा करेंगे। वो सब बसों और वैगनों में भर के जाते हैं मस्जिद आयशा, फिर वहाँ से अहराम बांधते हैं, फिर वापस आते हैं। इमाम इब्ने तैमिया, किसी ने उनसे पूछा कि जब औरतें इस तरह जा सकती हैं तो मर्दों को भी वहाँ जाके करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ, अगर मर्दों को भी वही उजर लाहक हो जाए जो औरतों को है। मुराद ये कि नहीं हो सकता, तो लिहाजा इस बारे में शरह सदर रखिए कि बार बार उम्रे के लिए जाना और इस तरह के काम करना ये एक तकल्लुफ के साथ साथ एक जुरत भी है। तो अल्लाह ताला थोड़ा काम सुन्नत के मुताबिक करवाए, उतनी देर बैठ के वैसे कर लें। एक और बात आपको छोटी सी जिक्र करूँ, उम्रे और तवाफ में फ़र्क क्या है, सिर्फ सही का फ़र्क है। आप सिर्फ वहाँ से जाकर और दूसरा बाल मुंडवाने का जिक्र है, आप तवाफ दिन में 4-10 कर लीजिए, आपने किसको गिनाना है कि मैंने उम्रा किया है। सही का चक्कर लगाना कोई लाजमी नहीं, आप उतने चक्कर उसके लगाएं। और ये चीज़ अगर जहन में रखें ना कि अजर देना किसने है, तो जिसने तरीका बताया उसने ही अजर देना है ना। तो बहरहाल लेकिन हमारी तसल्ली नहीं होती इस बारे में, अल्लाह ताला आसान करे। बवक्ते ज़रूरत हाइजा का तवाफ़ इफाज़ा करना, ये बड़ा अहम है, ये आप में से कोई भी मिस ना करे, इसको गौर से सुनिएगा। अगर मखसूस अय्याम वाली खातून ने तवाफ़ इफाज़ा ना किया हो और मक्का मुकरमा में इसका ठहरना मुमकिन ना हो तो वो चली जाए और पाक होने पर मक्का मुकरमा वापस आकर तवाफ़ कर ले। तवाफ़ करने तक इसे इस दवाजी ताल्लुकात की इजाज़त नहीं होगी। अगर इसके लिए मक्का मुकरमा वापस आना मुमकिन ना हो या इसे खदशा हो कि वो वापस नहीं आ सकेगी, तो अहले इल्म के एक गिरोह ने ऐसी हालत में इजाज़त दी है कि वो अच्छी तरह नीचे कपड़ा बांध कर तवाफ़ इफाज़ा कर ले। इन हजरात में से शेखुस्सलाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने कय्यम और सऊदी अरब के साबिक मुफ्ती आज़म शेख इब्ने बाज़ हैं, इसको समझिएगा। ये बात आपने शायद पहली दफ़ा पढ़ी होगी। पहली बात है कि बेस्ट थिंग क्या है, औरत तवाफ़ इफाज़ा नहीं कर सकी, अब हज नहीं होता इसके बगैर, ये एक मुअल्लक चीज़ रह गई है, अब वापसी है। अगर तो वो सऊदी अरब के किसी और शहर से या इर्द गिर्द के किसी मुल्क से चली जाए, जा सकती, गुना नहीं है, लेकिन फिर उसको एज सुन एज पॉसिबल वापस सऊदी अरब में आना होगा और एक तवाफ़ इफाज़ा की नीयत का करना है। बट इस दौरान वो एहराम की पाबंदियों में रहेगी, जो कि काफ़ी मुश्किल है। अब दूसरी सूरत है कि आप गए दूसरे मुल्कों से, अब क्या करें इसके बारे में, ये जो मेरी राय है ना, याद रखिए, इसको मैंने आज फिर बहुत स्टडी किया कि कोई गलत बात ना चली जाए आपके लिए, और अहम बात है। तो और ये जो बड़े बड़े आइमाए कराम मज़हर है, इब्ने बाज, इमाम इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यम, बड़े माने हुए आलिम थे, इन्होंने इस असूल पे, जिसको अरबी में किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, उसका उर्दू तर्जुमा क्या है, कि ज़रूरत कुछ चीज़ों को मुबाह कर देती है। अद-ज़रूरियात मुबाहुल, मुबाह कर देती हैं ज़रूरियात कुछ ऐसी पाबंदियों को। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी औरत जल्दी से तवाफ़ करे, लेकिन अपने आप को पूरी तरह समेट कर, कोई खदशा ना हो किसी किस्म की गंदगी के फैलने का, तो वो तवाफ़ कर ले। यहाँ से आप देखिए कि तवाफ़ हिफाज़ा अहम कितना है। यहाँ ये भी नहीं कहा कि ना करें, और इस फतवे की कोई दलील नहीं है, ये याद रख, इसकी हदीस कोई नहीं है, ये कह लीजिए कि फिर एक इज्तिहादी मामला है। तो अल्लाह आलम, जो जिस पर रहे, अगर मुमकिन हो तो इंसान इंतज़ार करके तवाफ़ करके जाए। हाइजा से तवाफ़ विदा का सुकूत, हाँ तवाफ़ हिफाज़ा कर चुकी थी औरत, जैसे सबने किया, मक्का से जाने से पहले पीरियड्स हो गए, तो अब तवाफ़ विदा फिर ना करे तो कोई हर्ज नहीं। हज करने वाले लोगों को तवाफ़ विदा किए बगैर मक्का मुकरमा से वापस आने की इजाज़त नहीं, आम तौर पर इजाज़त नहीं है। अलबत्ता तवाफ़ हिफाज़ा से फारिग मखसूस अय्याम वाली खातून को तवाफ़ विदा किए बगैर वापस जाने की इजाज़त है, और ऐसी सूरत में इस पर कोई दम लाजिम नहीं आएगा। ठीक है, ये तो एक बात समझ आती है, लेकिन यह कि तवाफ़ हिफाज़ा वाला इशू बहुत सीरियस है। नफास वाली खातून से तवाफ़ विदा का सकूत, जच्चगी वाली खातून अगर तवाफ़ हिफाज़ा कर चुकी हो तो इसे भी तवाफ़ विदा किए बगैर मक्का मुकरमा से अपने वतन वापस रवाना होने की इजाज़त है, ऐसी सूरत में इस पर भी कोई दम लाजिम नहीं आएगा। दोनों में सेम इशू है, क्योंकि औरत की मजबूरी है, वो जान के तो ऐसा नहीं कर रही। ठीक है, तो ये थे ख़वातीन से मुतल्लिक इश्यूज़।